ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि वह देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल से सुबह के समय भी दो अतिरिक्त प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नवा रायपुर अटल नगर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम में आज 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 552 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी सम्मानित किया गया। समारोह में एमबीए के छात्र चिराग जैन को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मर चुना गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत आज तकनीकी क्षमता और वैश्विक जुड़ाव के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां भावी नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका देश को विश्व पटल पर और मजबूत बनाने में अहम होगी। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया एक अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल में खुद को सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना कर रही है।
Everything today is being leveraged.
आज हर मौके का लाभ उठाया जा रहा है, भले ही उसे हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा हो। विश्व एक अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल में खुद को सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। राष्ट्र और उद्योग दोनों में जोखिम और संचालन के खतरे को कम करने और अपने स्रोतों में विविधता लाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह दृष्टिकोण व्यावसायिक निर्णयों या विदेश नीति के मामले में आवश्यक होता जा रहा है।
समारोह में संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर संजीव पाराशर ने वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस वर्ष आईआईएम रायपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से पब्लिक पॉलिसी और एचपीसीएल के लिए एनर्जी मैनेजमेंट जैसे दो नए एमबीए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। समारोह को आईआईएम रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरपर्सन पुनीत डालमिया ने भी संबोधित किया। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार ने नागरिकों को अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीददारी न करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने राज्यों को एलपीजी वितरण को विशेष रूप से घरेलू और आवश्यक जरूरतों के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। साथ ही जमाखोरी, हेराफेरी और गलत सूचना के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया है। इस बीच पश्चिम एशिया में संकट के बीच कोल इंडिया लिमिटेड देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साईराम ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान आकाशवाणी समाचार को बताया कि ऊर्जा मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडार उपलब्ध है।
जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव आ रहा है वो गैस को लेकर है। ऑयल भी कुछ हद तक इम्पैक्ट हुआ है, बट गैस का मेजर जो इम्पोर्ट है वो उसी रास्ते से होता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसका इम्पैक्ट जो है ज्यादा पड़ा है। मेनली जो गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए एक चैलेंज हो गया है ऑपरेट करना। तो अगर ये मान लें कि उतनी कैपेसिटी अगर हमारे टोटल जनरेशन कैपेसिटी में से हट गई, उसको पूरा करने के लिए कोल को ही आगे आना पड़ेगा। तो उसके लिए कोल इंडिया पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आज की डेट में पर्याप्त कोयले का पीटहेड में स्टॉक है, थर्मल पावर प्लांट्स के पास में भी अच्छा स्टॉक है, और उसके अलावा हमारी जितनी माइंस हैं, माइंस के अंदर में भी हमने कोल सीम्स को एक्सपोज करके रखा हुआ है, ताकि कभी भी डिमांड आए और रिक्वायरमेंट आए हम उस कोयले को एक्सकवेशन करके और उसको पावर प्लांट तक भेज सकें। इसमें जो एक और चैलेंज आने वाला है वो है कि जब हम कोयले को प्रेषण करेंगे तो हमको रेल माध्यम से प्रेषण करना पड़ेगा। उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल और रेल मंत्रालय वो आपस में बात करके किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा कोयला पावर प्लांट तक भेज पाएंगे, उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं।
रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत रायपुर और मांढर के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए जाने के कारण 5 और 6 अप्रैल को कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 10 पैसेंजर गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें रायपुर से बिलासपुर और रायपुर से दुर्ग के बीच चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की 4 ट्रेनों को रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और गोंदिया के बीच समाप्त किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कल संपन्न हो गया। रायपुर में आयोजित इस खेल आयोजन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स देश की आदिवासी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और उनकी खेल दक्षता को सामने लाने का अनूठा अवसर साबित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा भी की।
अब हर साल ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में भी हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए अगर स्वर्ण पदक जीतेंगे व्यक्तिगत विधा के लिए मैं बता रहा हूं, तो शासन से प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 1.5 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, इसके मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और उसी तरह से दलीय विधा के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 रुपया, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं।
समापन समारोह को मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मेरी कॉम और फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। गौरतलब है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के पीएम श्री विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आईआईटी भिलाई में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर के 150 पीएम श्री शिक्षकों को अनुभव आधारित शिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को पढ़ाने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को आईआईटी भिलाई की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ले जाकर तकनीकों और कर प्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही 21वीं सदी की शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए भी उन्हें तैयार किया गया। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण में नवाचार, एसटीईएम शिक्षा और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर दिया।
कैसे एआई बेस्ड लर्निंग हो, कैसे करिकुलम मॉडिफाई किए जाए ताकि उसमें हम एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, स्टार्टअप जैसे कल्चर को स्कूल में स्टूडेंट्स को दे सकें, इस पर ट्रेनिंग चल रही है जिसमें मुख्य रूप से उनको एआई बेस्ड ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और फिर उन एआई का उपयोग कैसे विभिन्न एरियाज में, जैसे कि एग्रीकल्चर में कैसे एआई, स्वास्थ्य में कैसे एआई, इन सब के ऊपर उन्हें ट्रेनिंग देना और स्कूलों में जाकर के स्टूडेंट्स में कैसे डालेंगे, कैसे सिखाएंगे, इस पर भी बात की जा रही।
आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल 5 अप्रैल से 5-5 मिनट के 2 अतिरिक्त प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार बुलेटिन सुबह 9:55 से 10 बजे तक और 11:55 से 12 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। इनका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा किया जाएगा। महासमुंद जिले में स्थित खल्लारी माता मंदिर में कल से 5 दिवसीय खल्लारी मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मां खल्लारी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग से खल्लारी मंदिर तक पहुंच मार्ग को सुगम बनाने की घोषणा भी की। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रेहटी खोल चेक पोस्ट के पास वाहनों की तलाशी के दौरान 2 वाहनों से 2 क्विंटल 81 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,41,00,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी दी गई है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल रमन डेका ने आज जशपुर जिले के बहराखार गांव में पीएम जनमन योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने अंबिकापुर में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य शासन ने राजधानी रायपुर में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से 4 नए फ्लाईओवर निर्माण के लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और भिलाई खुर्सीपार स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित एनटीए जेईई मेंस परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को चप्पल के अंदर मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि वह देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल से सुबह के समय भी दो अतिरिक्त प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।